धैर्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो शिष्ठाणम् नमो आयर्याणम् नमो वैच्छायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् तीन भुवन के मुकुटमणि गुण नमो शीर्ष परमात्मा वीतराग अविरुद्ध। सर्वज्ञ भगवान की वाणी के अनुसार हम यहाँ तीन भुवन का यानी तीन लोक का स्वरूप देख रहे हैं। अधोलोक और ऊर्धोलोक संबंधी हमने बहुत सारी बातें देखी हैं। अब हम थोड़ा तिर्यक लोक यानी मध्य लोक की बातें भी देखेंगे। हमने देखा है कि जो पहली पृथ्वी है उसकी डायमेंशन पूर्व पश्चिम एक राजू और दक्षिण उत्तर सात राजू है, तो इसको हम आड़ा यानी तिर्यक लोक, तिर्यक का अर्थ होता है आड़ा, तिर्यक यानी तिर्यंश ऐसा नहीं है, तिर्यक उसका हॉरिजॉन्टल मध्य लोक की बात है। यहाँ तो मध्य लोक कितना है, तो पहली पृथ्वी के ऊपर का जो है यानी मध्य लोक की डायमेंशन कितनी, तो एक लाख योजन हाइट वाला है, और ऐसा कितना फैला है, तो एक राजू बाय सात राजू। फिर भी उसके बीचों बीच जो एक राजू बाय एक राजू वाली एरिया है उसको हम कंसीडर करेंगे, उसी को तिर्यक लोक कहेंगे, मध्य लोक भी कहेंगे। भले वो इतना फैला हुआ है फिर भी हमें यहाँ त्रस जो बीच में रहते हैं जहाँ असंख्यात द्वीप और समुद्र है उसकी बात हम कहेंगे। बाहर तो मात्र पृथ्वी है और वो एक राजू बाय एक राजू जो एरिया है त्रस नाली की, उसमें क्या है, एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, और एक द्वीप को सराउंडिंग दूसरा समुद्र है, उस समुद्र को सराउंडिंग द्वीप है, उसको सराउंडिंग समुद्र है, ऐसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद वलयाकृति ऐसे द्वीप और समुद्र है, ऐसा है, ऐसे कितने हैं तो कितने असंख्यात है। उसकी एक राजू एरिया में आपके पास जो चार्ट है उसको निकालना जरा, तीन नंबर का, ये पहले हमने देखी थी कल बात है रविवार को सुबह में, हम शॉर्ट में उसको देख के आगे बढ़ेंगे। ये तीन नंबर के चार्ट में तिर्यक लोग जो बताया है तो ये एक राजू का एक राजू एरिया में बताया है, और पूरे एक राजू वाला जो व्यास है डायमीटर उतना अगर पूरा एक राउंड है गोल निकालेंगे तो ये क्या है, अंतिम समुद्र की आउटर बॉर्डर है। अंतिम समुद्र का नाम है स्वयंभू रमण समुद्र, और वो एक द्वीप एक समुद्र एक द्वीप एक समुद्र करते करते वो लास्ट वाला है, उसके अंदर क्या है, उसी नाम वाला एक द्वीप है, उसका नाम है स्वयंभू रमण द्वीप। लास्ट वाला है वो स्वयंभू रमण समुद्र, उसके अंदर स्वयंभू रमण द्वीप, बाहर से अंदर आते तो समुद्र से आधा द्वीप, फिर द्वीप से आधा आगे यानी उसके पहले वाला समुद्र, उसके अंदर चले आओ तो उसके आधा द्वीप, इस तरह से अंदर तक आधा आधा कहेंगे, और अंदर से बाहर बताएंगे तो डबल 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 कहेंगे। ऐसे कितने द्वीप और समुद्र है तो कहते असंख्यात है। असंख्यात का मेजरमेंट भी हमने देखा था कि 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ल्य में जितने समय है उतने ये असंख्यात द्वीप और समुद्र है। हमने तो एक आउली में कितने समय देखे थे, तो एक सेकंड में कितने सारे असंख्यात हो गए, और यहाँ तो बात इतने कोड़ा कोड़ी पल्लों की कहते हैं, तो ये कितने अधिक हो गए, और वो केवल इतने संख्या में ऐसा नहीं है, पहले से दूसरा दो गुना, दूसरे से तीसरा दो गुना, तीसरे से चौथा दो गुना, चौथे से पांचवा दो गुना, दो गुना दो गुना दो गुना आगे बढ़ता चला जाएगा, तो उसकी मैग्नीट्यूड कितनी ह्यूज होती है, ऐसे आगे चले जाओ चले जाओ चले जाओ, इतने असंख्यात द्वीप समुद्र है, और ये सब कितने एरिया में है, एक राजू में। तो ये राजू कितना बड़ा होगा इसका थोड़ा सा एहसास आता है। अब आगे बढ़ेंगे, तो इसमें ये हमने जो असंख्यात द्वीप समुद्र देखे थे तो उसमें सबसे सेंटर वाला है जम्बू द्वीप, जो हम जिसके ऊपर रहते हैं। यहाँ आपके सामने जो चार्ट है, चार्ट नंबर 4, उसमें बीच में जो पीला डॉट केवल दिख रहा है, क्योंकि उसको बड़ा बनाने का कोई साधन नहीं था, क्योंकि आगे वाले उससे डबल डबल दिखाने था। तो ये तो 1 लाख तो उसका डायमीटर है, उसकी पीले डॉट का,
वो जम्बू द्वीप,
वो जम्बू द्वीप है। सेंटर से एक बाजू की उसकी त्रिज्या यानी रेडियस देखेंगे तो 50,000 यानी आधा लाख होगी। देखो यहाँ बोर्ड पर जो लिखा है ना आपके सामने, ये जो यहाँ का बोर्ड है, ये 1 लाख उसका डायमीटर है और आधा लाख। सेंटर से अगर एक बाजू देखेंगे तो आधा ही लाख है, पूरा डायमीटर है 1 लाख के जन। ये सेंटर का ही पूरा राउंड है, ये जम्बू द्वीप ही फुल सर्कल यानी पूरा एक गोलाकार है। उसके आगे वाला समुद्र है, ये यहाँ से यहाँ तक 2 लाख है। इसको डायमीटर नहीं कर सकते, उसको हम विस्तार कहेंगे ऐसा, क्योंकि ये 2 लाख वाला ऐसा पूरा गोल है, ऐसा यहाँ पूरा ऐसा गोल इसको घेरे हुए है। तो हर बार कहीं से भी देखो तो वो 2 लाख 2 लाख 2 लाख है। और यहाँ से अगर वो बाजू की अगर हम देखेंगे पूरी, तो ये 2 लाख इधर, एक बीच में 1 लाख और इधर 5 लाख हो जाएगा आउटर डायमीटर। पर उसके सेंटर में एक द्वीप है, यानी थ्रू आउट समुद्र नहीं है, बीच में समुद्र है। उसके आगे का द्वीप देखते हम, यहाँ से यहाँ 4 लाख योजन है ये। इसका नाम हमने देखा था उस दिन, धाकी खंड। उसके आगे का समुद्र कालोदक समुद्र 8 लाख योजन विस्तार वाला है। उसके आगे का पुष्कर द्वीप है ये पूरा ही, वो 16 लाख है। परंतु उसके बीचों बीच में ऐसा ही सेंटर में एक पर्वत पाया जाता है जिसका नाम है मानुषोत्तर पर्वत। इसको देखने के लिए अभी हम इस चार्ट पर आते, देखो ये जो आपके पास भी है चार नंबर, जो यहाँ बोर्ड पर भी दिखाया है, ये सेंटर में ये पीला दिख रहा है वो 1 लाख योजन विस्तार वाला है। ये लवण समुद्र है वो एक बाजू 2 लाख है। उसके आगे धाकी खंड है वो यहाँ 4 लाख है। कालोदरी समुद्र 8 लाख है। पुष्करवर ये पूरा इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक है, आगे कोई वहाँ कोई रचना नहीं दिखाई, केवल इतने ही भाग में दिखाई है। तो ये आधा पुष्कर हुआ यहाँ तक, उसको पुष्करार्ध कहते हैं। यानी ये पूरा 16 है, परंतु ये बीच में ये जो पर्वत है पूरा ऐसा कंकण आकृति, इसको कहते हैं मानुषोत्तर पर्वत। इसके परभाग में मनुष्य नहीं जा सकते, देव भी उनको उठाकर नहीं ले जा सकते। कोई यहाँ का मनुष्य यहाँ कहीं पर भी कोई देव उठाकर उसको फेंक सकता है, ले जा सकता है, परंतु कोई भी मनुष्य इसके परे जा ही नहीं सकता। मनुष्य की लिमिट कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। ये पूरा ही जो है वो मनुष्य लोक है, इसी को ढाई द्वीप कहते हैं। ढाई क्यों, जम्बू द्वीप पूरा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूर्व घाट की, यहाँ से लेकर यहाँ तक पश्चिम घाट की खंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूर्व पुष्करार्ध और यहाँ से लेकर यहाँ तक पश्चिम पुष्करार्ध। तो ये एक, ये दूसरा और ये आधा, ये नहीं, ये पूरा नहीं है, इससे आधा। तो क्या कहते हैं, ये ढाई द्वीप, अढ़ाई द्वीप। गुजराती में अढ़ाई कहते ना, कढ़ाई कहते, अढ़ी द्वीप। और उसके बाहर क्या है, तो ये द्वीप, इसमें कोई ये रचना नहीं है। कौन सी रचना, जो हम अभी देखने जा रहे हैं जम्बू द्वीप में हम देखेंगे। देखो जम्बू द्वीप में तो हम कल ऐसे हमने बात की थी, 6.5 पर्वत है जम्बू द्वीप में, वो गोलाकार में 6.5 है। और बाकी आगे के वही पर्वत है वैसे ही, जिसको कुलाचल कहते हैं, परंतु वो 6.5 नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फैला है। देखो यहाँ एक पर्वत, यहाँ एक पर्वत, जैसे ये साइकिल के 6.5 होते ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, हाँ यहाँ से है, ऐसे ये जो पर्वत फैले है जम्बू द्वीप में तो 6.5 है और इसमें ऐसे तिरछे फैले हुए
सर्कल है
ऐसे यहाँ से भी। तो अभी उसकी बात करेंगे हम, पहले इसको देख लेते हैं। देखो एक से दूसरा दुगुना 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 ऐसे असंख्या द्वीप समुद्र हमने देखे हैं। हाँ जम्बू द्वीप 5 नंबर का चार्ट देखेंगे अभी हम। क्योंकि हमने ये थोड़ी बातें देख ली थी, कल अभी यहाँ पर भी देख लेते हैं। फिर जम्बू द्वीप को पहले हम देख लेते कि 1,00,000 योजन विस्तार वाला जम्बू द्वीप है, और फिर वो 1,00,000 गोलाकार में क्या क्या बातें हैं उसको देखेंगे, और फिर उसके आधार से आगे के द्वीपों की रचना हम देखेंगे। देखो ये पूरा जम्बू द्वीप है, ऐसा 1,00,000 योजन है और ऐसा भी 1,00,000 योजन है, ये पूरा गोल है। यहाँ वो बराबर फिगर नहीं आ रही है, परंतु ये गोल दोनों ओर से व्यास समान है उसका। तो उसमें क्या क्या देखते हैं, तो ये पूरा जम्बू द्वीप आड़े उसके 6 पर्वत है, जिसको कहेंगे कुलाचल पर्वत, पूर्व से पश्चिम तक। देखो यहाँ तो केवल एक झिकझैक लाइन ही है, ये पीले पॉइंट जो पीला पट्टा है ना, ये भरत क्षेत्र है, तो इसमें एक ऐसी झिकझैक लाइन है, ये एक पर्वत है, उसके ऊपर ये थोड़ा फेंट पिंक है वो एक क्षेत्र है, ये सेकंड नंबर का पर्वत है, फिर यहाँ क्षेत्र है, फिर ये थर्ड नंबर का पर्वत है। आपने नोटिस किया होगा, इससे ये पर्वत दुगुना, पर्वत से क्षेत्र दुगुना, इससे पर्वत दुगुना, उससे क्षेत्र दुगुना, उससे ये क्षेत्र दुगुना, और उससे यहाँ का क्षेत्र दुगुना। ऐसे ऊपर की ओर से भी देखेंगे, ये ऐरावत क्षेत्र है, वहाँ एक पर्वत है, फिर एक क्षेत्र, फिर एक पर्वत, फिर एक क्षेत्र, फिर एक पर्वत, फिर यहाँ का क्षेत्र। तो ये पूरा ही यहाँ से लेकर 1,00,000 योजन है, इसके हम 190 पार करेंगे, भाग करेंगे, 1,00,000 / 190, तो क्या होगा, एक भाग का प्रमाण आएगा। ये तो भरत क्षेत्र जो है वो ऐसा फैला हुआ है, और ये उसकी ऐसी हाइट है, यहाँ से सेंटर में यह हमारा जो धनुष होता है उस शेप का है। यह हमारे घर में ऐसे आपने वो भारत में देखा ऐसा टोकरी होती है, टोकरी, वैसे ये शेप है उसका, इतना ज्यादा कर्वेचर भी नहीं है, परंतु ये इस तरह से है, और ये नीचे इसको धनुष को कहते हैं ना, ये इसको जीवा कहते हैं, जीवा, जैसे ये धनुष की जो डोरी होती है प्रत्यंचा, ऐसा ये आड़ा है और नीचे गोलाकार है, और ये जो मध्य में है इसको विश्वकम्भ या उसकी चौड़ाई कहेंगे। तो ये कितनी है, तो 1,00,000 योजन डिवाइडेड बाय 190, तो 526 पॉइंट कुछ होगा वो। ये पेज नंबर है आपके पास, मेरे ख्याल से 126 के आसपास होना चाहिए, नहीं 134 पेज पर, 134 पेज पर है ये। हाँ 526 पॉइंट और 6/19
नीचे से पांचवी
छठी लाइन। हाँ ये भरत क्षेत्र का, इसको बाण कहते हैं। धनुष में अगर हम बाण लगाएंगे तो इस पोजीशन में लगता है ना सेंटर में, तो इसको भी बाण कहते हैं, विष्कम्भ कहते हैं, उसकी ऐसी चौड़ाई कहेंगे उसको, ये वाली। तो इससे दो गुना यहाँ का पर्वत होगा, उससे दो गुना क्षेत्र, दो गुना पर्वत, दो गुना, इससे दो गुना है, यानी पूरे इसमें से 190 पार्ट हम कर देते हैं। इसी का एक चार्ट बनाया हमने, मैंने यहाँ 135 पृष्ठ पर सेंटर में एक जो चार्ट दिखाया, देखो कि ये जो 6 पर्वतों के द्वारा यहाँ 7 क्षेत्र होते हैं, क्या कहा, 6 पर्वत है तो उसके दोनों ओर हम क्षेत्र गिनेंगे तो कितने हो गए, 6 में अंतराल तो 1, 2, 3, 4, 5 अंतराल हुए, दोनों बाजू में एक एक क्षेत्र, तो 7 क्षेत्र हो जाएंगे, बराबर। तो ये कौन कौन से क्षेत्र है, कौन कौन से पर्वत है, इसको मैंने ऊपर और नीचे ऐसा डिवाइड किया, ऊपर पर्वत लिखे है, नीचे क्षेत्र लिखे है। देखो भरत क्षेत्र एक भाग प्रमाण है, उसका भाग कितना है वो लिखा है उसमें, उसके आगे का जो पर्वत है उसका नाम है हिमवान, वो 2 भाग है, उसके आगे हिमवत क्षेत्र है 4 भाग प्रमाण, महाहिमवान पर्वत है 8 भाग प्रमाण, हरि क्षेत्र है 16 भाग प्रमाण, निषद पर्वत है 32 भाग प्रमाण। अभी हम इस यही रोको, इसको दूसरी ओर से देखेंगे, ऐरावत 1 भाग प्रमाण, शिखरी पर्वत 2 भाग, हिरण्यवत क्षेत्र 4 भाग, रुक्मी पर्वत 8 भाग, फिर रम्य क्षेत्र 16 भाग और नील पर्वत 32 भाग, और बीच में विदेह क्षेत्र दोनों के लिए कॉमन है 64 भाग। अब यहाँ देखते हम, यहाँ ये भरत क्षेत्र यहाँ लिखा है, भरत क्षेत्र, पर्वत यहाँ लिखा है हिमवान पर्वत, फिर आगे का क्षेत्र हिमवत क्षेत्र, यहाँ लिखा है महाहिमवान पर्वत, ये हरि क्षेत्र, ये निषद पर्वत, ये 32 सकाय थे। ऐसे यहाँ पर भी ये पर्वत 32वां भाग प्रमाण हुआ था, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा ही क्षेत्र ये 64 भाग प्रमाण है। ये जो 64 भाग प्रमाण क्षेत्र है, ये सेंटर में मेरु पर्वत 10,000 योजन का व्यास वाला ये उसका बेस है मेरु पर्वत का। उसके आगे यहाँ से लेकर ये 10,000 योजन तो यहाँ तक हो गया, उसके आगे यहाँ तक ये सारा जो है वो भद्रशाल वन है, ये जो ग्रीन दिखाया है। दक्षिण में और उत्तर में ये जहाँ कुरु लिखा है ये तो उत्तम भोगभूमि के क्षेत्र है, और यहाँ जो दीवार जैसी रचना दिखाई देती है इसके पूर्व में ये इस दीवार तक ये पूरा ही इतना विदेह क्षेत्र है। ये मेरु पर्वत है ये, और ये मेरु संबंधी विदेह क्षेत्र है, पूर्व का विदेह, और ये मेरु के पश्चिम में है वो है पश्चिम विदेह। अब इसमें से ये जो नदियां बहते आई है, अब इस पर्वत से यहाँ से एक नदी आई यहाँ तक, मेरु को प्रदक्षिणा करके यहाँ चली गई, ऊपर के पर्वत से नदी आई है यहाँ 1/4 ऐसे प्रदक्षिणा देके यहाँ चली गई है। इस नदी के कारण इस विदेह क्षेत्र के उत्तर और दक्षिण दो भाग हुए। अब यहाँ इन पर्वतों में से और भी कितनी नदियां यहाँ नीचे आती है, और यहाँ ऐसे ऐसे करके ये पर्वत भी है यहाँ पर, इनके कारण ये विदेह क्षेत्र के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भाग हुए। दक्षिण में भी हमें 9 से लेकर 16 तक नंबर दिए, हमेशा जो विदेह के नंबर है क्लॉकवाइज दिए हैं, यानी 1 से 8 तक, फिर 9 से 16 तक, ये 17 से 24 तक, और फिर 25 से 32 तक। आपने कभी वो इंद्रधनुष विधान या इनकी जो पूजा आप देखना कभी, जब हम अर्घ्य चढ़ाएंगे एक एक विदेह वाले के, क्योंकि यहाँ विजयार्ध पर्वत भी है और भी जो अन्य रचनाएं हैं अकृत्रिम चैत्यालय, उनके पूरे जो इंद्रध्वज विधान होता है ना उसमें अर्घ्य इसी क्लॉकवाइज आप अगर उसके नाम लेके देखेंगे अर्घ्यों के नाम तो ऐसे ही चढ़ाए जाते हैं, देखना कभी आप। अब ये बीच में जो है यहाँ से यहाँ ऐसे पर्वत दिखा है, इसका नाम है गजदंत पर्वत, हाथी के दांत जैसे ऐसे करो है तो ये गजदंत पर्वत। यहाँ एक डॉट दिखाया है, यहाँ नीचे एक डॉट दिखाया है, यहाँ ये वृक्ष होते हैं, वृक्ष नहीं पृथ्वी का एक रत्नमयी रचनाएं होती है, बहुत बड़े बड़े होते हैं, और वो एक ही नहीं है तो यहाँ हजारों उसके छोटे छोटे वृक्ष उसके उसको परिवार कहते हैं उसका। तो इसके नाम क्या है, तो इसका नाम है जम्बू वृक्ष, और यह है शालमली वृक्ष। ये जम्बू वृक्ष के कारण इस द्वीप को जम्बू द्वीप कहते हैं। ऐसे वृक्ष आगे धातकी खंड में है तो वहाँ धातकी वृक्ष के कारण उसको धातकी नाम पड़ा है। यहाँ तो ये जो हमने आड़े पर्वत देखे हैं और मैंने आपको अभी बताया था पहले वाले चार्ट में वो तिरछे ऐसे बताए थे, स्पोक ले साइकिल के जो स्पोक्स होते हैं वैसे उसके पर्वत दिखाए थे। ये कैसे है, आड़े है, क्योंकि ये क्षेत्र पूरा गोल है और बाकी के कैसे कंकनाकृति है तो इस तरह से फैले हुए। अब वो 3 नंबर का फिर 4 देखेंगे हम। अभी ये जो हमने क्षेत्रों के और पर्वतों के नाम लिखे हैं, इसी नाम वाले पर्वत और क्षेत्र उन अन्य द्वीपों में भी है। देखिए जरा मीर भाई आप हमें पहले वाला चार्ट दिखाने की कोशिश, फर्स्ट है नंबर 3 जो हमने पहले देखा, एक नहीं 3 नहीं 4 सॉरी 4 नंबर का। देखो अभी हम आगे की, अभी ये कौन सा है हमारा, ये जो यहाँ से लगे ये देखो ये कालो देवी समुद्र है, ऊपर का ये लवण समुद्र, ऊपर का कालो देवी समुद्र, बीच में एक पर्वत दिखाई देता है आपको, इसका नाम है ईश्वाकार पर्वत। ऊपर भी ऐसा एक पर्वत है, ये पूर्व और पश्चिम इन दोनों को डिवाइड करने वाला ये पर्वत है। अब ये जो रचना यहाँ है वही से यहाँ पर भी है, मैं यहाँ बताऊंगी ताकि आपको समझने में आसान होगा। हमने क्या देखा था, यहाँ कौन कौन से पर्वत देखे थे हमने, दक्षिण से उत्तर, जैसे हमने भरत क्षेत्र देखा था नीचे, अब यहाँ का भरत क्षेत्र यहाँ देखो, ये ईश्वाकार पर्वत सेंटर में है, इसके यहाँ ये भरत क्षेत्र है, यहाँ का ये पूरा यहाँ का इतना बड़ा भरत क्षेत्र है। उसके बाद यहाँ एक पर्वत है, उसके आगे का क्षेत्र है, उसके आगे पर्वत है, उसके आगे क्षेत्र है, उसके आगे पर्वत है, और यहाँ इसका मेरु है। देखो हम इसके मेरु देख लेते हैं। ये जम्बूद्वीप में एक सुदर्शन मेरु सेंटर में है, यहाँ डॉट दिखाई दे रहा है। ये जो पूर्व यहाँ का धातकी खंड है, उसके यहाँ सेंटर में एक डॉट है, वो यहाँ का मेरु पर्वत है। यहाँ एक मेरु पर्वत है, यहाँ एक मेरु पर्वत है, और यहाँ एक मेरु पर्वत है। आपने पंचमेरु की तो पूजा बहुत बार की है ना? नाम याद है बेटा?
सरोजबेन
को ही होगा, और कौन पूजा करते है हमें मालूम नहीं है। हाँ देखो देखो, हमने तो देखा है ना, ये तो यहाँ लिखा है, देखो ये सुदर्शन मेरु। यहाँ क्या लिखा है? विजय, अचल, मंदर और विजयमाली। मिला आपकी चार्ट में, नीचे दिखाई देगा अच्छी तरह से। इसका पहले हम सेंटर का नाम लेंगे, ये कौन सा है? सुदर्शन मेरु यहाँ पर है, यहाँ पर जो सेंटर में है उसका नाम है
विजय,
यानी पूर्व का नाम लिया। फिर इसी के पश्चिम का नाम लिया, ये अचल मेरु। फिर यहाँ पूर्व पुष्करार्ध में मंदर मेरु, और पश्चिम पुष्करार्ध में विद्युन्माली मेरु। ये पांच में जब हम कहेंगे कि एक एक मेरु संबंधी, जम्बूद्वीप में जब हमने चर्चा अभी हमने देखी थी, तो जम्बूद्वीप संबंधी विदेह कहेंगे, जम्बूद्वीप का भरत क्षेत्र कहेंगे, जम्बूद्वीप का ऐरावत क्षेत्र कहेंगे। जब हम यहाँ की बात करेंगे धातकी खंड की, तो ये जम्बूद्वीप संबंधी ये यहाँ का भरत क्षेत्र पूर्व का, फिर ये जम्बूद्वीप का यहाँ विदेह क्षेत्र, सॉरी धातकी खंड का यहाँ विदेह क्षेत्र है, और ये घातकी खंड का ऐरावत क्षेत्र है पूर्व का, ये पश्चिम धातकी का यहाँ से लेकर इस तरह से। ऐसी ही रचना ये नीचे जो पुष्कर अर्ध है, ये अर्ध पुष्कर का यहाँ से यहाँ एक भरत क्षेत्र है, और यहाँ से यहाँ एक भरत क्षेत्र है। देखो भरत क्षेत्र कितने हुए, यहाँ एक, एक दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और जम्बूद्वीप में पांचवा, पांच भरत है। ऐसे ऊपर ऐरावत, यहाँ जम्बूद्वीप का एक ऐरावत, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, ये पांचवा, ये पांच ऐरावत। ऐसे ही पांच मेरु के पांच विदेह क्षेत्र भी हो गए, परंतु हमने ये बात देखी थी एक एक विदेह में 32-32 देखे, अष्टक 32 देखे ना, तो एक एक विदेह संबंधी 32-32 हो गए। तो ये सारी क्या है, तो ये जो भरत क्षेत्र, यहाँ भी कर्मभूमि होती है। भरत और ऐरावत में कालों का जो चक्र है, छह कालों का परिवर्तन भरत में और ऐरावत में होता है, वो भी आर्यखंड में। धातकी खंड में दो, पूर्व में और पश्चिम में, और पुष्कर में भी दो, एक पूर्व में एक पश्चिम में। पूर्व एंड पश्चिम भी यहाँ आया, ये पूर्व का और ये पश्चिम का। ऐरावत ऊपर की ओर है, ये पूर्व का और ये पश्चिम का। विदेह भी इसके देखो, ये मेरु है ना यहाँ पर, विजय मेरु, उसके विदेह क्षेत्र यहाँ हो गए। ये अचल मेरु, उसके विदेह क्षेत्र यहाँ हो गए। ये मंदर मेरु यहाँ है, उसके विदेह क्षेत्र इधर और इधर है, और ये विद्युन्माली मेरु इधर है, उसके ये मेरु इधर, सॉरी उसके विदेह क्षेत्र इधर और इधर है। अभी वो हर एक नदी में से, पर्वत में से कैसी नदियां निकलती है, कैसे बहती है, इसका बहुत विस्तार से वर्णन है, जो पुस्तक में भी किया है, और हम उसको थोड़ा गौण करके आगे बढ़ते हैं। देखो मुझे एक बात यहाँ आपको बतानी है, आप पेज नंबर 124 निकालना है। पहले पैराग्राफ में थोड़ी आपको करेक्शन बता रही हूँ, उसको पढ़ेंगे आपको ख्याल आएगा। लवण समुद्र का एक दिशा में विस्तार 2 लाख योजन का है। मिला? 124 पेज, फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन। ये अभी हमने जो सीखा है उसी की बात है। यहाँ पर लवण समुद्र का एक दिशा में विस्तार 2 लाख योजन का है, उसके आगे उसको घेरे हुए आगे का धातकी खंड नाम का द्वीप 4 लाख योजन विस्तार वाला है। पहले 2.5 लाख त्रिज्या में ये 4 लाख मिलाकर ये 7.5 लिखा है, 6.5 करो उसको, 7 के बदले 6 लिखो, 6.5 लाख योजन त्रिज्या वाला अर्थात 15 के बदले 13 करो, 13 लाख योजन बाहरी व्यास वाला धातकी खंड द्वीप है। 124 पेज लाइन नंबर 3 7.5 लिखा है उसके 6.5 करना और 15 लिखे उसमें 13 करना। देखो इनमें क्या लिखा है उसको मैं आपको बताऊंगी। हाँ देखो ये धातकी खंड है ना यहाँ पर, यहाँ ये
धूल है।
हाँ ये 6.5 के बदले 7 लिखा गया है और 13 के बदले 15 हुआ है। नीचे वही बात फिर दोबारा लिखी वहाँ बराबर है, ये ऊपर कुछ उल्टा पुल्टा हुआ है। देखो इसको मैं बताना चाहती हूँ आपको, ये लाख योजन वाला जम्बूद्वीप है, लवण समुद्र यहाँ 2 लाख और यहाँ 2 लाख। पूरा यहाँ लवण समुद्र का आउटर डायमीटर देखना है तो कितना है? 5 लाख। अब ये उसके आगे ये धातकी खंड है, ये यहाँ सेंटर से 2.5 लाख था और उसके आगे कितना मिला है? 4 लाख। तो एक बाजू कितना हुआ? 6.5, तो 13 हुआ। वही करेक्शन वहाँ करना था,
दोनों
मिलाकर। देखो किसी भी द्वीप का अभी हम कहेंगे ना, बाहरी द्वीप का ये इनर डायमीटर, उसका इनर और ये आउटर, ये आउटर जो डायमीटर यहाँ आउटलाइन से यहाँ के आउटर लाइन तक, इसको कहते हैं उस द्वीप की सूची। सूची ऐसा शब्द आता है। देखो ये अभी कालोदक समुद्र पर हम घटित करेंगे, ये कालोदक समुद्र की आउटर बॉर्डर और ये आउटर बॉर्डर, तो ये पूरा ये आउटर डायमीटर अगर हम देखेंगे उसको, तो उसको उस समुद्र की सूची कहते हैं। ये क्या शब्द आते हैं पारिभाषिक, उसको ही देखना है और कुछ नहीं इसमें ज्यादा। तो ये डबल डबल होते हैं वो सब हमने देख लिए हैं। अब हाँ और थोड़ा देख लेते हैं, 126 पेज कराना है।
126
पर तो हमने वो तो गणित बताया है, वो तो हमने देखा था ना, पल्ले वो गड्ढा करना, रोम खंडों से भरना, 100 साल के बाद निकालना, उसकी तो बात देखी थी। अब हम आते हैं 127 पेज पर, सेकंड पैराग्राफ, जो नया पैराग्राफ चौथी लाइन से शुरू होता है। कितने टोटल द्वीप है? तो असंख्यात। उस असंख्यात का नाप कितना देखा? 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्या, उसके जितने समय है ना, उतने यहाँ संख्या में द्वीप समुद्र है, दो गुने विस्तार वाले। उसमें से आधे द्वीप है और आधे समुद्र है। जैसे दोनों मिलकर 10 होते तो 5-5 होगी ना, क्योंकि सेंटर से द्वीप से शुरू किया था और लास्ट में है समुद्र, तो जितने द्वीप है उतने ही समुद्र है। तो ये जो हमने संख्या देखी उसका आधा करो तो उतने आधे द्वीप है और आधे समुद्र है। यहाँ तक बात ख्याल में? अब इन सभी द्वीप और समुद्रों में से बीच के 2.5 द्वीप अलग निकालो, और लास्ट में जो हम किया था आउटर हाफ ऑफ स्वयंभ्रमण द्वीप, उसको भी अलग निकालो। क्यों निकालना है? क्योंकि कुछ विशेषता बताने वाली हूँ मैं। आपके पास जो चार्ट है देखो, चार्ट नंबर 3 देखो आपके हाथ में जो है, 3 और 4 सामने सामने रखो, आपके हाथ सामने पुस्तक है ना, वो ज्यादा इजी होगा। 3 नंबर के चार्ट में आउटर वो जो ब्लू है वो स्वयंभ्रमण समुद्र है, जिसका नाम लेफ्ट साइड में लिखा है। उसके अंदर जो ग्रीन दिख रहा है दे रहा है वो स्वयंभ्रमण द्वीप है। उसमें ग्रीन कलर में 2 शेड्स बताइए, आउटर शेड है और ये इनर शेड है, और दोनों के बीच में एक पर्वत दिखा है कंकनाकृति, उसका नाम है स्वयंप्रभ पर्वत। तो स्वयंप्रभ पर्वत के आउटर साइड में समुद्र की ओर, यानी स्वयंभ्रमण द्वीप का आउटर हाफ और ये 2.5 द्वीप, इनमें कर्मभूमि है। ये स्वयंभ्रमण समुद्र में भी कर्मभूमि है। कर्मभूमि का अर्थ क्या है? यहाँ द्विंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीव पाए जाएंगे। अभी एकेंद्रिय तो सर्वत्र है, उसकी बात नहीं है, कुछ ख्याल में आती है? तो बाकी के द्वीपों में क्या है? तो बाकी इतने असंख्या द्वीप है, समुद्र छोड़ो मात्र द्वीप, उन सभी द्वीपों में किरियंचों की जघन्य भोग भूमि है।
केवल
मात्र तिरियंच की, और भोग भूमि का उसका अर्थ है वहाँ मात्र संगी पंच इंद्रिय तिरियंच पाए जाएंगे, वहाँ कोई द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय नहीं होंगे। दूसरा हमने एक बार रूल देखा था, जितने भोग भूमि वाले जीव होते वो सारे मरकर देव में ही जाले जाते हैं। मिथ्या दृष्टि है तो भवनत्रिक में जाएंगे, सम्य दृष्टि है तो सौधर्म ईशान में जाएंगे, उसके ऊपर नहीं जाएंगे, कहाँ के भोग भूमि के। तो स्वर्गों में इनका नंबर लगेगा कि हमारा आपका लगेगा, देखो देखो जरा। हाँ हाँ,
पंचेंद्रिय जो आपने कहा तो उसमें मनुष्य भी आ जाते हैं?
ना ना ना, तीरियंच मनुष्य तो ढाई द्वीप के बाहर जा ही नहीं सकते। हाँ जी,
तो ये सब तीरियंच बल्कि
सब जाने वाले देवलोक में
भोग भूमि के जितने जीव हैं तीरियंच यहाँ पर, वे सारे के सारे देवगति में जाएंगे। तो मैं आगे थोड़ा सा बात बोलना चाहता हूँ, ये है कि अपने यहाँ जो मनुष्य है, जो मांसाहार करते हैं, जो लीकर दारू आदि जो पीते हैं, वो मोक्ष में जाएंगे, स्वर्गों में जाएंगे। क्या हम तुम जो उनसे जुदे हैं, कुछ नहीं करते हैं, आलू प्याज आदि भी नहीं खाते, वो जाएंगे? यानी वहाँ तो अधिकतर संख्या तो तीरंज से जाने वालों के मनुष्य है ही संख्या, और उसमें समझ लेना कितनों का नंबर लगना है। तो हमें हमारा भाव संभालना चाहिए। चल में जाना है ना आपको?
और ये तो जघन्य भोग भूमि की बात हुई। हाँ, आपका कुछ प्रश्न है? हाँ,
मनुष्य की भोग भूमि में तो युगले युगले
जन्म। हाँ, भोग भूमि में तो युगलिया ही होते हैं। हाँ, तीर्यंश में भी। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये तो बाहर की हमने जघन्य भोग भूमि देखी, कहाँ? ढाई द्वीप के बाहर। ढाई द्वीप के बाहर यानी यहाँ पर भी ये जो यहाँ तो कोई मनुष्य नहीं जा सकता है। ये पुष्कर के आधे हाफ में भी जघन्य भोग भूमि है, आगे के द्वीपों में भी जघन्य भोग भूमि है। अब यहाँ जो हम ढाई द्वीप में देख लेते हैं, यहाँ कांस्टेंट भोग भूमि कहाँ कहाँ है हमने देखी थी? ये तो यहाँ तो भरत क्षेत्र है, ये पर्वत के बाद यहाँ जो होगा ये जघन्य भोग भूमि, ये मध्यम भोग भूमि, यहाँ बीच में उत्तम भोग भूमि, ऐसे यहाँ पर भी, और इसमें भी, और अंदर जम्बू द्वीप में भी हमने देखी थी। यानी यहाँ कांस्टेंट जघन्य भोग भूमिया भी है, मध्यम भोग भूमिया भी है, और उत्तम भोग भूमिया भी है। और भरत और ऐरावत में, पांच भरत और पांच ऐरावत में जो काल चक्र होता है, पहला काल है तब उत्तम भोग भूमि यहीं पर, दूसरे काल में यहीं पर मध्यम भोग भूमि, और तीसरे काल में यहीं पर जघन्य भोग भूमि। भोग भूमि के जीव या तो मिथ्या दृष्टि होगी या चौथे गुणस्थान तक का पुरुषार्थ करेंगे। सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो, भोग भूमि के जीव मरकर देव में चले जाएंगे, भवनवासी या सौधर में वगैरह होंगे। इतनी बात ख्याल में आई? हाँ, हाँ, उनके सब कल्प वृक्षों में से ही होगा। वो नहीं है, वो कुभोग भूमि होता है। ये कुभोग भूमि अब हम देखेंगे, अभी कल टाइम मिलेगा तो। ये जो एक समुद्र है ना, यहाँ लवण समुद्र और ये कालोदक समुद्र, यहाँ ऐसे कोई जैसे हमारे आइलैंड्स होते हैं वैसे विशिष्ट उनके आइलैंड्स होते हैं, तो यहाँ 24 यहाँ नहीं 48 हो गया, और इसमें भी आते हैं
वो बताएंगे कहीं
वो सब। तो उनके कुभोग भूमि कहाँ, वो अलग अलग बंदर के मुंह वाले या ऐसा अलग अलग सारे एक टांग वाले पूंछ वाले ऐसे मनुष्य वहाँ पाए जाते हैं, वो कुभोग भूमि वाले कुमानुष। हाँ, नहीं मनुष्य नहीं, कर्म भूमि तीर्यंचों की कर्म भूमि, मनुष्य बाहर जा ही नहीं सकते। स्वयंभू रमण समुद्र और स्वयंभू रमण का आउटर हाफ द्वीप सीरियन चों की कर्म भूमि, अंदर में भोग भूमि। तो ये जो स्वयंभू रमण द्वीप और समुद्र देखे ना, वहाँ तो बड़ी बड़ी अवगाहना वाली इंद्रिय आदि जीव पाए जाते। देखो निकाल ना 128 पेज में आपको वहाँ बताऊंगी। ये कितनी कितनी, हाँ दे नीचे का टेबल देख लो। स्वयं प्रभ पर्वत की बाहरी ओर, स्वयं प्रभ पर्वत ख्याल में है ना, पेज नंबर 128। स्वयं प्रभ पर्वत याद आया, लास्ट वाला स्वयं रमण समुद्र था, उसके अंदर स्वयं रमण द्वीप था, उसके पीछे बीच एक पूरा ही राउंड सराउंडिंग पर्वत है, उसका नाम है स्वयं प्रभ। उसके बाहरी ओर आउटर हाफ में जीवों की उत्कृष्ट अवगाहना ऐसी है। देखो एक व्यू में वहाँ कमल है, हजार योजन लंबाई वाला है कमल, एक 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 एक, 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 एक कमल। हाँ यहाँ क्या हम देखते हैं, कोई वनस्पति कायिक है, उनकी अवगाहना इतनी छोटी छोटी है कि एक पत्ता पन्ना ले लो तो उसमें भी अनेक जीवों के शरीर जुड़े हुए हैं, और वहाँ एक ही जीव की अवगाहना इतनी बड़ी है।
एक योजन कितना बना है?
एक योजन देखा ना, चार कोष का एक योजन होता है, द्विंद्रिय महायोजन हो के। द्विंद्रिय में शंख है 12 योजन वाला, आप यहाँ इमेजिन करते हैं ना कि बड़ी बड़ी कोई मूवीज निकालते हैं, शायद वहाँ से जन्म लेकर आया होगा, कुछ याद होगा इसलिए निकालते हैं। द्विंद्रिय में रक्त बिच्छू उसका एग्जांपल है, वो 3/4 योजन लंबाई वाला है।
ये रक्त बिच्छू यानी रेड स्कॉर्पियन,
यानी 3 कोस वाला लंबा। चतुरिंद्रिय में भ्रमर है 1 योजन वाला है, और पंचेंद्रियों में मत्स्य जो है 1000 योजन वाला, हमने देखा था उसके तो पूरे डायमेंशन हमने देखा था, 1000 योजन लंबा, 500 योजन ऐसा चौड़ा, और उसकी 250 योजन ऐसा उसकी ऊंचाई। उसके भी पहले का एक निकालना पेज, अभी ऐसे असंख्यात है वहाँ जी, ये मैक्सिमम अवगाहना बताई, मैक्सिमम अवगाहना बताई।
वो समुद्र कितना बड़ा होगा?
समुद्र भी बड़ा है, ऐसे असंख्यात जीव वहाँ है, बड़े बड़े अवगाहना वाले, छोटे भी अवगाहना वाले होंगे वहाँ पर। हाँ क्या
तुम जाते ही नहीं उधर?
अरे मनुष्य यहीं पर रहता है, आप उधर जन्म लेके आए हो। हाँ हाँ देखो हम नहीं अनुव्रत पंचम, देखो 127 पर मैं बताना चाहती हूँ, फोर्थ लाइन, इनमें से आधे तो द्वीप है आधे समुद्र है, दोनों की संख्या समान है। इन असंख्यात समुद्रों में से कर्मभूमि संबंधी 3 समुद्र है, एक लवण समुद्र जो ढाई द्वीप के अंदर आता है, कालोदधी समुद्र, और लास्ट वाला स्वयं भ्रमण समुद्र। ये कैसे है? कर्मभूमि संबंधी समुद्र। समुद्र में से पहला लवण समुद्र है, अभी केवल समुद्रों की हम क्रम बता रहे, दूसरा कालोदधी समुद्र है, और अंतिम स्वयं भ्रमण समुद्र है। इन्हीं में जलचर जीव पाए जाते। क्या कहा? जलचर का अर्थ क्या है? जल में रहने वाले, जल में जो त्रस्कायिक जीव रहते हैं, कोई मछली है जो अन्य जो कुछ है, इन्हीं 3 समुद्रों में है। कौन कौन से? लवण समुद्र, कालोदरी समुद्र, अंतिम स्वयं रमण समुद्र। बीच वाले समुद्रों में कोई भी जलचर नहीं है, ना द्विंद्रिय ना पंचेंद्रिय ना कुछ है, बस पानी है। तो जलकायिक, जलकायिक अलग है, वो एकेंद्रिय है। हाँ जलचर नहीं है, यानी बिल्कुल प्लेन, कोई उसमें जीव नहीं है,
मच्छी कछुए सर
कुछ कुछ नहीं है। बीच के समुद्रों में कुछ नहीं है, बीच के द्वीपों में जघन्य भोग भूमि है। तो इन्हीं में जलचर जीव, अन्य में नहीं। जलचर कहा? जलकायिक नहीं, जलचर यानी पानी में रहने वाले मत्स्य, सांप, कछुए आदि। अब इनमें से समुद्रों का स्वाद कैसा है पानी का वो बताया। लवण समुद्र लवण समान खारा स्वाद है, कालोदरी समुद्र जल समान स्वाद है, जैसे नदी का पानी होता है वैसा है। पुष्करवर समुद्र, ये पुष्कर द्वीप है ना, उसके आउटर साइड में, उसका भी जल समान है। वारुणीवर है, मदिरा समान स्वाद है। क्षीरवर समुद्र दुग्ध समान है, ये पांचवा देखो है। और घृतवर समुद्र घृत समान स्वाद है। इनको छोड़कर अन्य समुद्रों का स्वाद इक्षुरस समान है। इक्षुरस समझते हैं? हाँ, शेरडी नो रस।
गन्ना गन्ना
दुग्ध यानी दूध दूध घृत यानी घी
घी
मालूम नहीं है? अच्छा अच्छा अच्छा, घृत यानी घी घी। हाँ, ये संस्कृत शब्द है, ये इसको मालूम होगा क्यों नहीं है?
नमक
देखो, आपने शायद सुना होगा कि जब तीर्थंकर के जीव को जन्माभिषेक के लिए ले जाते हैं ना, ये क्षीर समुद्र से पानी है, ये पांचवा समुद्र है। स्वाद,
है तो पानी
है तो पानी ही, वो फिर सफेद हाँ पानी जैसा पानी है बस। हाँ चलो, अभी हम यही रुकते हैं क्योंकि वो ऋक्षुरस देखकर वो वहाँ निकले भी मनोज भाई।
वहाँ मनुष्य नहीं जा सकता, डायबिटीज से बच गए।
बोलो चौबीसों भगवान की।